स्टैंडर्ड ओपनिंग नरेशन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मैल्कम ग्लैडवेल के। एक ऐसा नाम है जिनके आइडियाज पढ़कर सुनकर लगता है कि अरे दुनिया को ऐसे भी देखा जा सकता है।
बिल्कुल सही कहा। ग्लैडवेल मतलब कोई टिपिकल एकेडमिक या फिलोसोफर तो है नहीं।
हाँ वही,
उन्हें आप एक तरह का जन विद्वान या पॉपुलर थिंकर कह सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जो मुश्किल रिसर्च होती है ना, सोशल साइंस की, साइकोलॉजी की, उसे वो इतनी दिलचस्प कहानियों के जरिए बताते हैं कि मजा आ जाता है।
बिल्कुल
आसान बना देते हैं।
सही। हमारे पास भी आज उनके जीवन पर, उनके जो मुख्य काम हैं उन पर कुछ नोट्स और लेख हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ग्लैडवेल के विचारों में ऐसा क्या खास है, क्यों लोग उन्हें इतना पढ़ते हैं,
हाँ, क्या वो सिर्फ अच्छी कहानियां सुनाते हैं या उनमें कोई गहरी बात भी है?
और आज के समय में उनकी बातें कितनी रेलिवेंट है।
बिल्कुल, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैल्कम ग्लैडवेल, पूरा नाम मैल्कम टिमोथी ग्लैडवेल, जन्म इंग्लैंड में 1963 में,
लेकिन पले बड़े कनाडा में। हाँ, तो कनाडाई पत्रकार, लेखक और हाँ काफी पॉपुलर स्पीकर भी हैं।
हाँ जी। और जैसा आपने कहा, उनकी अहमियत शायद इसी बात में है कि वो अकादमिक दुनिया के भारी भरकम आइडियाज और आम पढ़ने वाले के बीच एक पुल बनाते हैं।
विचारों को कहानी में ढालने की कला कमाल है।
हाँ, और ये भी देखना जरूरी है कि वो फेमस कब हुए, किस माहौल में। ग्लैडवेल समझिए 90s के आखिर में और 2000 की शुरुआत में सामने आए।
अच्छा,
ये वो टाइम था जब इंटरनेट बूम कर रहा था, .com का जमाना था और लोग नॉन फिक्शन में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। ऐसी किताबें जिनमें बड़े आइडियाजों पर आसानी से समझ आ जाएं।
तो मतलब उनके लिए माहौल एकदम सही था।
कह सकते हैं उनका काम जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस थ्योरी, इनके चौराहे पर खड़ा है। उसी दौर में आपको याद होगा डैनियल कहनेमन जैसे लोग थे, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वाले।
हाँ हाँ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो वाले।
बिल्कुल, या फिर वो फ्री इकोनॉमिक्स वाले लेखक स्टीवन लेविट और स्टीफन डबनर, ये सब भी छिपे हुए पैटर्न और कारणों की बात कर रहे थे। ग्लैडवेल ने इसी ट्रेंड को पकड़ा पर अपने कहानी कहने के अंदाज से उसे बिल्कुल अलग लेवल पर ले गए। एकेडमिक रिसर्च को मजेदार किस्सों में बदलना उनकी यूएसपी बन गई।
और उस वक्त के दूसरे बड़े नाम कौन थे जिनसे उनकी तुलना हो सकती है?
जैसे स्टीवन पिंकर हैं, भाषा और मनोविज्ञान पर लिखते हैं, या नसीम निकोलस तालेब, ब्लैक स्वान वाले, सुसान केन भी जिन्होंने इंट्रोवर्ट्स पर लिखा, ये सब भी एकेडमिक बातों को आम लोगों तक लाते हैं। पर सबके तरीके अलग हैं। ग्लैडवेल का अंदाज सबसे ज्यादा कहानी वाला है।
तो ये था वो माहौल, लेकिन ग्लैडवेल यहां तक पहुंचे कैसे? उनका बचपन, उनकी पढ़ाई, कुछ तो होगा जिसने उन्हें ऐसा बनाया।
ये काफी दिलचस्प है। जन्म इंग्लैंड में पर पले बड़े कनाडा के एक छोटे से शहर एल्मीरा, ओंटारियो में।
अच्छा।
उनकी माँ जॉयस जमैकन मूल की थी, साइकोथेरेपिस्ट और राइटर भी, और पिता ग्राहम वो एक ब्रिटिश गणित के प्रोफेसर थे।
यानी घर में पढ़ने लिखने का माहौल था।
बिल्कुल, और उनकी माँ की पृष्ठभूमि, उनकी अपनी मिक्स्ड हेरिटेज, शायद इस वजह से उनमें हमेशा चीजों को एक आउटसाइडर की तरह देखने की आदत रही।
उन्होंने 1984 में टोरंटो यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से हिस्ट्री में डिग्री ली।
हिस्ट्री में? ये इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना था शुरुआत में उन्हें काफी रिजेक्शन झेलने पड़े थे एडवर्टाइजिंग वगैरह में।
हाँ, ये तो खुद उनकी थ्योरी का सबूत लगता है। कई एड एजेंसीज और ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया।
अरे, तो फिर वो जर्नलिज्म की तरफ मुड़े, कुछ कंजर्वेटिव माने जाने वाले पब्लिकेशंस में काम किया, फिर 1987 में द वॉशिंगटन पोस्ट ज्वाइन किया। वहां करीब 10 साल उन्होंने बिजनेस और साइंस पर लिखा।
और फिर आया बड़ा ब्रेक, द न्यूयॉर्कर मैगजीन।
बिल्कुल, 1996 में द न्यूयॉर्कर में स्टाफ राइटर बनना उनके लिए गेम चेंजर था। वहीं उन्होंने अपनी वो खास स्टाइल डेवलप की, लंबी गहरी रिसर्च वाली कहानियां जिनमें किसी इंसान या घटना के बहाने सोशल साइंस के बड़े आइडियाज समझाए जाते हैं। उनके 1996 के दो फेमस आर्टिकल थे, द टिपिंग पॉइंट और द कूल हंट। इन्हीं से उनकी पहली जबरदस्त हिट किताब का आइडिया आया।
और उसके बाद तो फिर ग्लैडवेल ही ग्लैडवेल, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में नाम आया। और अब तो अपना पॉडकास्ट नेटवर्क भी है, पुश्किन इंडस्ट्रीज।
सही, चलिए अब उनके कुछ मशहूर किताबों और उनके कोर आइडियाज पर बात करते हैं। सबसे पहले जाहिर है द टिपिंग पॉइंट 2000।
हाँ, इस किताब ने तो तहलका मचा दिया था। ये आइडिया कि कैसे छोटी छोटी चीजें अचानक बड़ा असर डाल देती हैं, वो कनेक्टर्स, मेवन, सेल्समैन, ये शब्द तो आम हो गए थे।
बिल्कुल, कित आपका सवाल यही है, कोई फैशन ट्रेंड हो, कोई आइडिया हो या कोई भी बीमारी ही क्यों ना हो, कैसे वो अचानक तेजी से फैल जाती है? ग्लैडविल करते हैं, ये यूं ही नहीं होता। इसके पीछे कुछ खास तरह के लोग होते हैं, कनेक्टर्स जो बहुत लोगों को जानते हैं, मेवन्स जिनके पास खूब जानकारी होती है, और सेल्समैन जो लोगों को मना लेते हैं।
हाँ,
और कुछ खास हालात होते हैं, जब ये सब मिलते हैं तो आता है टिपिंग पॉइंट, वो मोमेंट जब चीजें एकदम से बदल जाती हैं। मतलब बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े रिसोर्स नहीं चाहिए, सही जगह पर छोटा सा पुश भी काफी है।
कमाल का कॉन्सेप्ट था। फिर आई ब्लिंक 2005, वो पलक झपकते ही लिए गए फैसलों के बारे में।
हाँ, ब्लिंक बात करती है हमारे इंट्यूशन की, हमारे पहले 2 सेकंड के जजमेंट की, उसकी ताकत और उसके खतरों की। ग्लैडवेल इसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं।
थिन स्लाइसिंग मतलब
किसी सिचुएशन को बहुत कम जानकारी के आधार पर एकदम तुरंत भांप लेना। कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी घंटों की सोच विचार से बेहतर और तेज फैसला ले सकता है।
अच्छा,
लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं, ये थिन स्लाइसिंग हमें बुरी तरह गुमराह भी कर सकती है, खासकर जब हमारे अंदर के जो बायस होते हैं, पूर्वाग्रह, वो हावी हो जाते हैं।
हाँ ये तो है। कब भरोसा करें अपनी गट फीलिंग पर और कब नहीं, मुश्किल सवाल है। इसके बाद आई आउटलायर्स 2008। ये शायद उनकी सबसे ज्यादा डिस्कस हुई किताब है जिसने उस सेल्फ मेड वाली कहानी को चैलेंज किया।
बिल्कुल, आउटलायर्स का मेन पॉइंट यही है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस होती ना, वो सिर्फ किसी की पर्सनल काबिलियत या मेहनत का नतीजा नहीं होती,
तो फिर
उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है छिपे हुए फायदों का। जैसे आप किस महीने में पैदा हुए, आपको मौके कैसे मिले, आपकी कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आपके समुदाय की आदतें कैसी हैं, और सही टाइम पर सही जगह होना, ये सब मिलकर किसी को आउटलायर बनाते हैं।
और इसी किताब ने उस 10,000 घंटे वाले नियम को पॉपुलर किया।
हाँ, ये आइडिया कि किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए करीब 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। हालांकि इस पर काफी बहस भी हुई है।
हाँ, वही मैं कहने वाला था, क्या ये वाकई हर चीज पर लागू होता है? इतना सिंपल है।
बिल्कुल सही पॉइंट। आलोचक और यहां तक कि जिन रिसर्चर्स के काम पर यह बेस था, जैसे एंडर्स एरिक्सन, उन्होंने भी कहा कि ग्लैडवेल ने इसे थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया।
अच्छा,
बात सिर्फ घंटे गिनने की नहीं है, बात है डेलिबरेट प्रैक्टिस की। मतलब आप फोकस के साथ अपनी कमियों को सुधारते हुए प्रैक्टिस करें, और ये भी शायद हर फील्ड में, जैसे क्रिएटिव कामों में, उतना सीधा लागू नहीं होता जितना स्पोर्ट्स या म्यूजिक में।
ये बारीकियां अक्सर मिस हो जाती हैं। फिर आई डेविड एंड गोलियाथ 2013। ये भी उसी तरह उल्टी सोच वाली किताब थी कि कमजोरी कैसे ताकत बन सकती है।
हाँ, ये किताब पूछती है कि क्या वाकई बड़ा और ताकतवर होना हमेशा फायदेमंद है, क्या गोलियत हमेशा डेविड से जीतता है। ग्लैडवेल का तर्क है कि जिन्हें हम नुकसान या कमजोरी मानते हैं, जैसे डिसलेक्सिया होना या बचपन मुश्किलों में बीतना,
हाँ,
उनसे कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदे भी मिल सकते हैं, और जिन्हें हम ताकत मानते हैं, जैसे बहुत सारे रिसोर्स होना या बहुत पावर होना, वो कभी कभी बोझ या कमजोरी भी साबित हो सकती हैं। इसमें वो इन्वर्टेड यू कर्व जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं।
इन्वर्टेड यू कर्व।
हाँ, मतलब कोई भी अच्छी चीज एक लिमिट के बाद बुरी होने लगती है।
हाँ,
जैसे क्लास में बच्चे बहुत कम हो तो भी ठीक नहीं, बहुत ज्यादा हो तो भी ठीक नहीं, पैसा भी एक हद तक ही खुशी देता है।
समझ गया। और उनकी हाल की किताब है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स 2019। हम अजनबियों को समझने में क्यों गलतियां करते हैं।
उस पर ये आज के जमाने के लिए बहुत ही रेलिवेंट किताब है। ग्लैडवेल कहते हैं कि जब हम अजनबियों से मिलते हैं तो हम कुछ गलत धारणाओं के साथ शुरुआत करते हैं।
जैसे
जैसे एक है डिफॉल्ट टू ट्रुथ, मतलब हम आमतौर पर मानकर चलते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है जब तक शक की कोई बहुत बड़ी वजह ना मिले।
होता है ऐसा।
और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन, यानी ये वहम कि हम किसी के चेहरे के भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उसके मन की बात एकदम सही सही पढ़ सकते हैं।
अच्छा, ये भी एक भ्रम है।
हाँ, ग्लैडवेल दिखाते हैं कि ये दोनों धारणाएं हमें अक्सर धोखा देती हैं और बड़ी बड़ी गलतफहमियों, यहां तक कि त्रासदियों की वजह बन सकती हैं।
तो अगर इन सब किताबों को एक साथ देखें तो ग्लैडवेल का मेन इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कोई नए सिद्धांत तो बना नहीं रहे?
नहीं, उनका योगदान नए सिद्धांत गढ़ने में उतना नहीं है जितना मौजूदा एकेडमिक रिसर्च को लेकर एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाने में है। वो एक बेहतरीन सिंथेसाइजर हैं।
सिंथेसाइजर।
हाँ, मतलब अलग अलग जगहों से जानकारी लेकर उसे जोड़कर एक नई समझने लायक तस्वीर बनाने वाले, और उससे भी बढ़कर वो एक शानदार कहानीकार हैं। उनका मूल संदेश शायद यही है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, ये अक्सर हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ चलती है, और इसमें कई छिपी हुई ताकतें और पैटर्न काम करते हैं।
और उनके काम में कुछ थीम बार बार नजर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ मेन थीम्स हैं। एक तो है संदर्भ की ताकत, पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि किसी की सक्सेस या फेलियर सिर्फ उसकी पर्सनल काबिलियत का मामला नहीं है, उसका माहौल, कल्चर, टाइमिंग, ये सब बहुत मैटर करता है। दूसरा, सहज ज्ञान के विपरीत सच, काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ्स। उन्हें आम सोच को पलटना बड़ा पसंद है। कमजोरी ताकत बन सकती है, फेलियर से सक्सेस मिल सकती है, छोटी चीजें बड़ा असर डाल सकती हैं।
सही।
और तीसरा, कहानी का ढांचा, नैरेटिव फ्रेम। शायद उनकी सबसे बड़ी इनोवेशन उनकी मेथड ही है। वो मुश्किल आइडियाज को समझाने के लिए ऐसी कहानियां चुनते हैं जो हमें इमोशनली कनेक्ट करती हैं, याद रह जाती हैं, हमें लगता है अरे वाह कुछ नया सीखा।
इसका असर तो दिखता है। आजकल बहुत से राइटर्स उनके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, उन्होंने पॉपुलर नॉन फिक्शन की पूरी एक जॉनर को प्रभावित किया है। मार्केटिंग हो, लीडरशिप हो, एजुकेशन हो, हर जगह उनके कॉन्सेप्ट जैसे स्टिकीनेस या वही 10,000 घंटे का रूल यूज होते हैं।
हाँ, भले ही कभी कभी गलत तरीके से।
हाँ ये बात भी है, कभी कभी उन्हें जरूरत से ज्यादा सरल करके या कॉन्टेक्स्ट से उठाकर इस्तेमाल किया जाता है।
अगर उनकी तुलना हम दूसरे बड़े विचारकों से करें, जैसे डैनियल काहनेमन या स्टीवन पिंकर, तो क्या फर्क है?
देखिए, काहनेमन जैसे लोग नोबल विजेता हैं। वो दशकों की अपनी ओरिजिनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, डेटा के आधार पर थ्योरी बनाते हैं। ग्लैडवेल ऐसा ओरिजिनल रिसर्च नहीं करते हैं।
तो वो क्या करते हैं?
वो एक तरह के क्यूरेटर हैं। वो अकादमिक दुनिया में जो इंटरेस्टिंग काम हो रहा है उसे चुनते हैं और फिर उसे एक मजेदार कहानी में बुनकर हमारे सामने पेश करते हैं।
अच्छा।
इसीलिए स्टीवन टिंकर जैसे जो आलोचक हैं वो उन पर आरोप लगाते हैं कि अच्छी कहानी कहने के चक्कर में वो साइंटिफिक बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं या सिर्फ वही डेटा चुनते हैं जो उनकी बात को सपोर्ट करे, जिसे चेरी पिकिंग कहते हैं।
तो क्या ग्लैडवेल मानते हैं इन आलोचनाओं को? उनका क्या कहना है?
ग्लैडवेल खुद को शायद एक अकाट्य सत्य बताने वाला साइंटिस्ट नहीं मानते। वो खुद को शायद एक बातचीत शुरू करने वाला, लोगों में क्यूरियोसिटी जगाने वाला मानते हैं।
एक तरह से सोचने पर मजबूर करने वाला।
हाँ, उनका मकसद है हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाना। इस लिहाज से देखें तो वो नसीम तालेब या फ्रीकोनॉमिक्स वालों के ज्यादा करीब हैं, जो अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस ढूंढते हैं और मुश्किल आइडियाज को आसान बनाते हैं।
तो फिर उनकी लेगेसी क्या है? आज वो कितने प्रासंगिक हैं?
उनकी लेगेसी एक मास्टर ट्रांसलेटर की है, जिसने यूनिवर्सिटी और बुक स्टोर के बीच की दूरी कम की है। उन्होंने लाखों लोगों को दुनिया के काम करने के छिपे हुए तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, चाहे वो सक्सेस हो, सोशल चेंज हो या ह्यूमन इंटरेक्शन।
हाँ, उनकी किताबें तो आज भी बेस्ट सेलर है और वो शब्द भी बन गया है, ग्लैडवेलियन।
बिल्कुल, ग्लैडवेलियन अब ऐसी किसी भी आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है जो किसी बड़े सोशल आइडिया को समझाने के लिए एक अनोखी, चौंकाने वाली कहानी या मिसाल का इस्तेमाल करे। उनका असर बिजनेस और सेल्फ हेल्प की दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा है।
हाँ, कंपनियों में, लीडरशिप ट्रेनिंग में उनकी किताबों का खूब जिक्र होता है।
सही कहा, और वो आज भी काफी एक्टिव हैं, खासकर अपने पॉडकास्ट से।
हाँ, रिविजनिस्ट हिस्ट्री काफी पॉपुलर है वो भी।
बिल्कुल, उसमें वो इतिहास की भूली बिसरी या गलत समझी गई घटनाओं को अपने खास अंदाज में दोबारा देखते हैं और अक्सर हमें चौंकाते हैं। तो वो किताबों और पॉडकास्ट के जरिए पब्लिक डिस्कोर्स में आज भी काफी रेलेवेंट है।
उनके कुछ फेमस कोट्स देखते हैं जो उनके विचारों को कैप्चर करते हैं, द टिपिंग पॉइंट वाली लाइन।
हाँ, वो मशहूर है। टिपिंग पॉइंट वो जादुई क्षण है जब कोई विचार, प्रवृत्ति या सामाजिक व्यवहार एक सीमा पार करता है, झुकता है और जंगल की आग की तरह फैल जाता है। ये उस किताब का पूरा सार है।
और प्रैक्टिस पर आउटलायर से।
अभ्यास वो चीज नहीं है जो आप अच्छा बनने के बाद करते हैं, ये वो चीज है जो आपको अच्छा बनाती है। ये उसी 10,000 घंटे वाले आइडिया से जुड़ा है कि मास्टरी के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सही तरीके की प्रैक्टिस, और हाँ, मौका भी।
और एक शर्त, कहानी कहने की हमारी आदत पर।
हाँ, ये उनकी अपनी मेथड पर भी एक तरह की टिप्पणी है। हम इंसानों में कहानी कहने की समस्या है। हम उन चीजों के लिए स्पष्टीकरण देने में कुछ ज्यादा ही तेज हैं जिनका हमारे पास वास्तव में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
मतलब हम आसान कहानियों में फंस जाते हैं।
हाँ, कि कैसे हम जटिल चीजों को समझने के लिए आसान नैरेटिव बना लेते हैं जो शायद पूरी सच्चाई ना हो। या फिर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स से ये हम इंसानों में सच मानने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हमारी कार्यशील धारणा ये है कि जिन लोगों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वो ईमानदार हैं। ये अजनबियों से डील करने में हमारी एक बेसिक वल्नरेबिलिटी दिखाता है।
लेकिन जैसा हमने पहले भी छुआ था, ग्लैडवेल पर क्रिटिसिज्म भी कम नहीं है, खासकर एकेडमिक हलके में।
हाँ बिल्कुल, आलोचना के मुख्य बिंदु वही हैं। पहला, ओवर सिंप्लीफिकेशन और चेरी पिकिंग। मतलब अपनी कहानी को फिट करने के लिए सबूत चुनना और जो फिट ना हो उसे छोड़ देना। इससे कहानी तो अच्छी बन जाती है पर शायद पूरी सच्चाई नहीं दिखती।
सही।
दूसरा वही 10,000 घंटे का नियम, जिसकी बारीकियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तीसरा कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, यानी दो चीजों के बीच सिर्फ संबंध देखकर यह मान लेना कि एक की वजह से दूसरी हो रही है।
हाँ, जैसे वो हॉकी प्लेयर्स की बर्थ डेट वाला उदाहरण।
बिल्कुल। क्या वो सच में कारण है या बस एक इंटरेस्टिंग पैटर्न? जैसे गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और डूबने की घटनाएं भी, पर आइसक्रीम खाने से कोई डूबता नहीं। ग्लैडवेल पर ऐसे कोरिलेशन को कॉजेशन बताने का आरोप लगता है।
इन आलोचनाओं के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त है। उनके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें हैं, फन फैक्ट्स।
कुछ हैं, जैसे वो खुद काफी अच्छे रनर रहे हैं। अपनी जवानी में कनाडा में नेशनल लेवल पर कंपटीशन किया है।
अरे वाह।
हाँ, और वो अक्सर रनिंग को मेहनत, प्रैक्टिस और साइकोलॉजी के मेटाफर की तरह यूज करते हैं।
और उनके वो खास बाल, वो तो उनकी पहचान ही बन गए।
हाँ बिल्कुल, उनका वो लुक। उन्होंने खुद भी इस पर बात की है कि कैसे उनकी मिक्स्ड रेस और ये लुक लोगों की उनके बारे में धारणाओं पर असर डालता है। ये भी एक तरह से उनके आउटसाइडर पर्सपेक्टिव का हिस्सा है।
और उनकी माँ का जिक्र किया था आपने, उनकी किताब।
हाँ, उनकी माँ जॉयस ग्लैडवेल साइकोथेरेपिस्ट थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, ब्राउन फेस बिग मास्टर, इंग्लैंड में एक जमैकन महिला होने के उनके अनुभवों पर। माल्कम कहते हैं कि उस किताब ने और उनकी माँ के अनुभवों ने उनकी पहचान और दुनिया को देखने के नजरिए पर बहुत गहरा असर डाला।
तो सब कुछ समेटते हुए माल्कम ग्लैडवेल को हम आखिर कैसे देखें? क्या वो बस एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं या उससे ज्यादा कुछ?
देखिए, ग्लैडवेल शायद हमारी सदी के सबसे प्रभावशाली विचारों के ट्रांसलेटर हैं। वो नए फिलोसॉफिकल सिस्टम नहीं बनाते, लेकिन वो सोशल साइंस की दुनिया से मुश्किल, अक्सर बोरिंग लगने वाले रिसर्च को उठाते हैं और उसे ऐसी दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने अकेडमिक ज्ञान को लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया है।
वो हमें सतह के नीचे झांकने को कहते हैं, छिपे हुए पैटर्न देखने को, चाहे वो सक्सेस हो, सोशल चेंज हो या बस अजनबियों से बात करना।
बिल्कुल, उन्होंने आम इंसान की सोचने के तरीके को बदला है। हमें दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज्यादा क्यूरियस बनाया है, सिखाया है कि चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं।
लेकिन वो सवाल फिर भी रहता है जो उनकी आलोचनाओं से भी जुड़ा है, क्या इस आसान और दिलचस्प बनाने के प्रोसेस में कुछ जरूरी चीजें खो जाती हैं? क्या एक अच्छी कहानी हमेशा पूरी सच्चाई होती है?
ये बहुत ही वैलिड और जरूरी सवाल है। क्या एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी एक्यूरेसी कुर्बान करना ठीक है? ग्लैडवेल की लेगेसी शायद इसी टेंशन में है। एकेडमिक रिगर और पब्लिक अपील के बीच बैलेंस कहाँ है? उनका काम हमें लगातार सवाल पूछने को उकसाता है, न सिर्फ दुनिया के बारे में बल्कि उन कहानियों के बारे में भी जो हम खुद को सुनाते हैं दुनिया को समझने के लिए। और शायद यही उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमें क्यूरियस बनाए रखना।
आज की ज्ञान गोष्ठी में माल्कम ग्लैडवेल के विचारों पर ये वाकई एक दिलचस्प और गहरी बातचीत रही।
हाँ, उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा।
स्टैंडर्ड क्लोजिंग नरेशन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्सित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।